اب چونکہ حضرت کعب نے سچ بولا اور اس سچ کی برکت ملی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. یہ دو حکم ہیں، نوٹ کیجئے گا. اجتماعی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور اجتماعی زندگی سے منسلک رہنا، اس کے فوائد اور برکات ہیں. سورۃ انعام آیت 71 میں بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدا تینا، کچھ اس کے ساتھی ہیں جو اس کو کہتے ہیں آؤ ہدایت کی طرف. تو لکھ لیجئے، یہ جو ہمارا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے نا، جیسے اب آپ سب ہم ادھر اس وقت موجود ہیں، لائک مائنڈیڈ لوگ، ایک گروہ کے ساتھ، ایک کلاس میں بیٹھنا، ایک اسکول سے پڑھنا، یہ ایک قافلے کی طرح ہوتا ہے. قافلے میں سفر کے دوران اگر کسی ساتھی کی ہمت جواب دے رہی ہو، کوئی معذوری آڑے آ رہی ہو، تو دوسرے ساتھی اس کو سہارا دے دیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں، اس کی گھوڑے کی نوکیل پکڑ لیں گے، اس کو اپنے اوپر لے آئیں گے، ادھر کر لیں گے، یہ کر لیں گے. لیکن ذرا سوچئے، اگر صحراؤں میں کوئی اکیلا ہو اور راستہ بھٹک جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا نصیب پھر کسی جانور کا لکھوا بننا ہے. تنہا نیکی کا کام بھی نہیں ہوتا. اکیلے لگتا بڑا آسان ہے، میں کر لوں گی، کسی کی سننی تھوڑی پڑیں گی. اپنے گھر میں چار لوگوں کو لے کے پڑھاتی ہوں، میں اپنے اوپر لیتی ہوں، میں ہمیشہ کسی کو بھی یہ بات سمجھاؤں تو میں اپنے اوپر لے کر ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ اگر میں کہوں کہ میں اکیلی پڑھا لوں گی، آپ کی تو پابندیاں ہی بڑی ہیں، آپ تو یہ نہیں اور وہ نہیں، شکوے کروں تو 10 کریں گے، گلے لوگ کرنے میں آتے ہزاروں کرتے ہیں. اپنی مرضی سے اب جو آپ کہہ رہے ہیں صبح کے آ کے ادھر بیٹھ جائیں، میں کہتی نہیں، مجھے تو 12 بجے کے بعد اٹھنا ہے. تو میں ایسا کرتی ہوں، 2 سے 4 اپنے گھر میں کلاس رکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ میرا فیصلہ ہے، مجھے کیا لگ رہا ہے، میں سوؤں گی خوب، اپنی مرضی سے سوؤں گی. اور میں کہتی ہوں ہفتے میں 4 چھٹیاں، 3 دن پڑھاؤں گی، میری مرضی. مرضیاں چلانی بڑی آسان ہے، بٹ ہوگا کیا؟ 2 بجے ڈور بھی مجھے کھولنا پڑے گا، اپنا گھر بھی مجھے خود ہی صاف کرنا پڑے گا، آنے والوں کے لیے ڈیسک بھی رکھنے پڑیں گے، بیچ میں بیلیں ہوں گی تو اٹھانی بھی پڑیں گی، اور فون بھی اٹھانے پڑیں گے، اور ترجمہ بھی کرانا پڑے گا، تجوید بھی کرانی پڑے گی، گرامر بھی، اور پڑھاؤں گی بھی، اور پھر چائے پانی کا انتظام بھی کروں گی. مجھے بتائیے مجھے کیا ملا؟ ون مین شو دین نہیں ہے. لکھ لیں یہ جملہ، لکھ لیں کہ جہاں ایک بندے کا سارا کام ہو نا، ون مین شو، وہ دین نہیں ہوتا، وہ میں ہوتی ہوں. لوگ کیا کہیں گے، ہائے سارے کام یہ کرتی ہیں، ہائے کتنے کام یہ کرتی ہیں، ہائے آپ شرم آتی ہمیں، ہائے ہم آپ کے گھر بھی آتے ہیں، یہ بھی آپ پکاتی بھی ہیں، کھلاتی بھی ہیں، بٹھاتی بھی ہیں، پڑھاتی ہیں. اس میں مجھے نا کیا ملتی، واہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ جو میں ہوا بھرتی ہے نا، یہ بڑی شروع میں اچھی لگتی ہے، لیکن یہ آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہم کھڑے اکیلے ہیں. بہترین کام کیا ہے؟ تنہا ہوں اور لوگ ملتے جائیں اور قافلہ بنتا جائے. تو دین میں اجتماعیت کو پکڑیں. کس کو پکڑیں؟ سچوں کو پکڑیں. سچے کون ہیں؟ جو نیتوں کے سچے، مقصد سچا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت، قرآن اور سنت کو تھامنے والے، اس کی دعوت دینے والے، لوریاں نہیں، کسی گروہ سے نہیں، کسی جماعت سے نہیں. اور عمل کے سچے، دین کو پلیوٹڈ نہیں کر کے دکھاتے، کر لو یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، چلو یہ بھی اچھا، آج کا دور، کل کا دور، اس کا دور، فلاں کا دور، نہیں، وہ سارے کاموں میں سچے. اور آپ کو یہاں سے اچھی صحبت کی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے دی کہ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح، اور برا دوست بھٹی پھونکنے والے کی طرح. اچھے دوست کے ساتھ بیٹھو گے نا، تمہیں کچھ نہ دے گا، لیکن بار بار جب شیشی کھولے گا تو خوشبو تو آئے گی نا، اور تھوڑی بہت تمہارے کپڑوں پہ خود بھی آ جائے گی. لیکن برا دوست بھٹی پھونکنے والا تمہیں کچھ نہیں دے گا نا، کوئی نقصان نہیں بھی دے گا، تو کم از کم یہ دیکھ لو کہ اس کی بھٹی سے جو دھواں اٹھے گا نا، اس کی وجہ سے تمہارے اپنے کپڑوں پہ کالس لگ جائے گی. تو اچھی دوستیوں کی یہاں بات ہے، یور فرینڈ شپ سرکل ول بی گڈ. اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اپنی اور اپنے بچوں کی اچھی صحبت کی بات کریں، ذرا سا اپنی دوستوں کو چیک کریں، تصور میں لائیں، کس دوست کے پاس ہوتی ہوں تو غیبتوں کی ڈھیر، کس میں ہوتی ہوں تو شکوے، شکایتیں، گلے، شکوے، کس دوست کی موجودگی میں فیشن میگزین، کیا ان ہے، کیا چل رہا ہے، किस में प्लानिंग होती है, किस में शादियों के प्लान्स बनते हैं, और कहाँ बैठती हूँ किसके साथ, किस सच पे और मकसद पे जीने को दिल करता है। यकीन करें, ये दो कीमती नसीहतें हैं जो अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहा है कि मुसलमान तकवा अख्तियार कर ले, और तकवा दिल की कैफियत है, अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत, उसके सिवा ना खौफ ना उसके सिवा किसी की मोहब्बत, और दिल हमेशा नेकियों की तरफ हो, बुराई से नफरत हो। ये वो कैफियत है जो दिल की हिफाजत करती है। फिर बुरे ख्याल दिल में नहीं दाखिल होते, हुब्बे दुनिया दिल में जमा नहीं होती, और सच्चों और सच्चों का साथ ये तकवा का तहफ्फुज़ करता है। बुरे लोगों का छोड़ो, अब ये नहीं, चलो चलो जो सब करें कर लो, और जब मशवरा करना हो ना सच्चे दोस्त से करें, जो खुद गलत काम करे वो आपको तो खुद ही गलत पे ले जाएगा, और अच्छे दोस्तों के साथ बैठकर बंदा खुद अच्छा होता है। आप किसी को देखें नमाज पढ़ते हुए, अच्छी सी नमाज पढ़े ना, आपकी भी नमाज अच्छी हो जाएगी, खुशी होगा, और किसी को धड़ल धड़ल नमाज पढ़ते देखें तो आप कहेंगे चलो मैं इससे तो बेहतर ही पढ़ती हूँ। एक कमज़ोर दिल और बुज़दिल आदमी जब बहादुरों की मजलिस में बैठता है ना, तो उसके अंदर भी नए नए अज़म आते हैं, और बुरा आदमी इबादत गुजारों और अच्छे लोगों में बैठता है तो नेकियाँ चुटकियाँ लेने लगती हैं। तो अपनी दोस्तियों को मैंने आपने चेक करना है, जिन में बैठेंगे वैसे ही हो जाएंगे, और आपका मेरा ईमान एवरेज ईमान है मेरी सारी दोस्तों के ईमान की, किसी का 100% है, किसी का 50 है, 60 है, 80 है, सबको जमा करके माइनस करें, उसको डिवाइड करेंगे ना, वो आपका ईमान होगा, जो कोई रह जाएगा 40-50%। और सहाबा से नेकी करना इसलिए भी आसान था कि वो अच्छे लोगों में थे, मुसाहिबत बंदे से अच्छे काम लेती है। याद रखिए, निफाक के साथ रहेंगे मुनाफिकत आएगी, ईमान वालों के साथ रहेंगे ईमान आएगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अच्छी सोहबतें अता कर दे। अब एक आयत थोड़ा सा इसका खुलासा दे देती हूँ। तबूक का इतना तذکرہ, इतनी तारीफें, इतनी सिफात, अब क्या हुआ, कुछ और ही हुआ। ये जो आयत आ रही ना 120, ये अबू खैसमा के बारे में है, जिनका तذکرہ पीछे कर चुकी हूँ, आयत उनके नाम के साथ ये लिख लें। मा काना लि अहलिल मदीनति व मन हौलहु मिनल आराब, अहले मदीना और उसके इर्द गिर्द के बद्दू लोगों के लिए ये रवा ही नहीं। ये जो माँ कान है ना, पीछे भी आपको तذکرہ किया था कि ये अंदाज ऐसे कि डजेंट सूट्स, ये सजता ही नहीं है, लायक ही नहीं है, किनको, मदीना वालों को जो उनके इर्द गिर्द हैं, आराब में से। क्या यतखल्लफुअ रसूलिल्लाह, के वो रसूल को छोड़ कर पीछे बैठे रहते। वला यरगबू बिअन्फुसिहिम अन नफ्सिही, और ना ये कि अपनी जानों को आपकी जान से बढ़कर अजीज रखते हैं। गज़वे तबूक के लिए निकलते हुए मदीना के माहौल में वो एक शेर है ना कि तपती राहें मुझको पुकारे, दामन पकड़े छाँव घनेरी वाला मामला था। अल्लाह के नबी तपती राहों की तरफ कूच कर गए, तो कोई ईमान का दावेदार पीछे कैसे रह सकता है, उसकी जान अल्लाह के नबी की जान से प्यारी है, उसको ज़्यादा दर्द आता है, उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको माल की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, असल में ये वो मौका है जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम में से कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक अल्लाह और उसका रसूल उसको अपनी जान, माल, औलाद और बाकी चीज़ों से प्यारा ना हो जाए। तो यहाँ बता दिया, नबी का साथ छोड़ना ऐसे वक्त में इस बात की दलील है कि अपनी जान नबी की जान से प्यारी है। सफ़र की सौबतों को अपनी आसाइशों पर तरजीह देते हो, तुम्हें मौज करनी है, नबी को मौज नहीं करनी, तुम्हारा वीकेंड है, उसका वीकेंड नहीं है, तुम्हारे घरों में शादियां होती हैं, नबी के घरों में नहीं होती, तुम्हारे बच्चे हैं, नबी के बच्चे नहीं हैं। अब आगे अगली आयत सुनिए, मेरा ख्याल है कि मुश्किल तरीन आयत है तर्जुमे के अतबार से, और अल्लाह करे आपको टेस्ट में यही आ जाए कि नबी को तुम क्या समझते हो, इंसान नहीं है, कैसे कहते नबी के लिए बड़ा सा, अरे वो तो बड़े नेक है। अल्लाह कहते नहीं, वजह वो नहीं है, जालिका, ये लफ्ज़ जालिका बड़ा अहम है, जालिका ये क्या, बिअन्नहुम ला युसीबहुम ज़मान, ये इसलिए कि इन्हें प्यास, मुशक्क़त, वला नसबुन वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाह, कि नहीं पहुंची उनको भी प्यास और ना मेहनत और ना फाके अल्लाह के रस्तों में, वला यताऊन मौतियन युगीदुल कुफार, और ना तकलीफ पहुंची इनको अल्लाह की राह में कि जहां कहीं भी वो कदम रखते हैं कुफार के दिलों को जलाते हुए। वला यनालून मिन अदुविन नईला, पर दुश्मन के मुकाबले में कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं, इल्ला कुतिब लहुम बिही अमलुन सालिहुन, तो इनके लिए सब कुछ के बस नेकियों का इंदराज होता है। क्या पता चला, अहले ईमान जब अल्लाह के रस्तों में निकलते हैं तो उनकी हर मुशक्कत पे, हर तकलीफ पे, हर कदम पे अल्लाह उनकी नेकियों के जखीरे में मुसलसल इजाफा फरमाता है। क्यों? इन्ना अल्लाह ला युदी अजरल मुहसिनीन, अल्लाह मोहसिनों का अजर ज़ाया नहीं करता, अल्लाह नेक लोगों का अजर नहीं ज़ाया करता। ये चीज़ें तो उनकी जिस्मानी तकलीफ़ों की थी, अब उनकी नेकियों की बात अगली आयत में साथ ही देखिएगा। वला युन्फिकूना नफ़कतन सगीरतन वला कबीरतन, और जो भी वो खर्च करते हैं, कोई नफका छोटा हो या बड़ा, वला यक्तऊना वादियन, और तय करते हैं कोई वादी, इल्ला कुतिबा लहुम, तो इनका एक एक अमल इनके लिए लिख लिया जाता है। क्यों? लियज़ज़हुमुल्लाहु अहसना मा कानू यामलून, ताकि अल्लाह बदला दे इन्हें बहुत ही उम्दा इसका जो वो अमल करते रहे। अल्लाह बदले देता है इनको इनके अमलों के। समझ आई आयत आपको? रग़बत है कि ये मोमिन कोई ना समझ लोग नहीं है, ये जब अल्लाह के नबी का साथ देते हैं तो इनको इस हकीकत का बड़ी अच्छी तरह पता है कि एक एक कदम पे नहीं किए, ये नबी का साथ थोड़ी दे रहे हैं, ये तो अपना साथ दे रहे हैं। एक एक जगह अपने लिए नेकियों के ठप्पे लगा रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट में अपने हिस्से डाल रहे हैं। असल में ईमान वालों के पास कैलकुलेटर्स बहुत बड़े होते हैं। वो नेकियां करते हैं जो जीरो लग 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 के आखरत के नामे अमाल में पहुंच जाए। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ ऐसे प्यारे लोगों की बात कर दी। पहले देखिए जो पीछे रहे उनकी बात कर दी, और ये बता दिया कि इनकी नजरें असल में मकसद पे हैं। जब मकसद पे नजरें होती हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें सामने नहीं आती। बस आप देखिए, ट्रेन बेहतरीन मिसाल है। ट्रेन बन जाए, 10 बोगी है ना, एक ट्रैक है, एक इंजन है, सब एक तरफ जा रहे हैं, रास्ते में खूबसूरत मंजर आते हैं, ट्रेन रुकती है, मुसाफिर देख रहे होते हैं, कहीं स्टॉप आए उतर जाएंगे, ट्रेन चलती जाती है। और किसी की एक बड़ी अच्छी कोटेशन थी कि घड़ी को ना देखो क्या बजा, ये देखो घड़ी क्या कर रही है, क्या? चलते जाओ, चलते जाओ, मुसलसल चलते जाओ। सख्त मौसम है तो क्या हुआ, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करेगा। तुम ठंडे बागों के घने सायों में बैठे हो, लटकते हुए अंगूरों के खोशे तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, ठंडी छांव अच्छी लग रही है, लेकिन ज़रा आखरत का अजर तो देखो, वहां से क्या छोड़ रहे हो और क्या ले रहे हो। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और अल्लाह की रजा की तलब में तुम मुसीबतों और तलखियों के बावजूद रसूल को तो निकलने पर मजबूर कर दो, और तुम आराम से बैठे रहो, राहत करो, मजे लो, ऐश करो। कभी तुमने सोचा तुम्हारी जिंदगी में कितनी अट्रैक्शंस है? नबी की जिंदगी की अट्रैक्शन क्या है? उनका क्या गोल है? उनकी क्या एंटरटेनमेंट है? वादा करते हो, दावा करते हो अल्लाह और से रसूल से मोहब्बत का, और ये मोहब्बत होती है? अपनी हालत पे गौर करो, अपनी कमजोरियों को देखो। और ये जो लफ्ज है ना जालिका, यकीन करें इसमें बहुत कुछ है। कल्बी जज्बात को बेदार किया जा रहा है, क्योंकि दिल में इंसान के किसी की मोहब्बत होती है ना, तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं करता। मैंने देखा माँ के मुंह से लुकमा नहीं गुजरता अगर बच्चा भूखा हो। जिससे प्यार होता है आप उसके बगैर नहीं खा सकते। वो बाहर धूप में और आपको एसी में भी गर्मी लग रही होती है कि मैं इधर क्यों बैठी हूँ, मैं उसके साथ क्यों नहीं हूँ। तो याद रखिए, वो कहते हैं कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। पहले मोहब्बत के हवाले से बात की है, और अब महज रास्ते की तलखियों और सफर से डरते हो। तुम तबुक में शामिल नहीं होना चाहते, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम्हें प्यास लगी, थकन हुई, भूख लगी, तुमने कोई भी कदम उठाया, काफिरों को गुस्सा दिलाया, तुम्हारे आने से हेड काउंट ही बढ़ गया, तो क्या तुम्हारा अल्लाह ये अजर जाया कर देगा? हजरत उमर से एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यामत के दिन जब आदमी अल्लाह के रास्ते में पेश आने वाली मुसीबतों का सिला और इनाम पाएगा, तो इस कदरों मंजिलत और गुमान से बड़ी हुई कीमत को देख कर उसका जी चाहेगा, काश अल्लाह के रास्ते में मेरी खाल कैंचियों से काटी जाती। एक रिवायत में ये तक आता है कि जब भी कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ें आईं, बीमारियां आईं, तो उस पे भी बंदे की ये ख्वाहिश होगी, और क्या कहेगा कि वहां मुझे तकलीफ होती और आज मुझको इसका सिला मिलता। और ये मुसीबतें और परेशानियां चली गई, अजर मौजूद है, ना खत्म होने वाला। सुबहान अल्लाह। और आप देखिए, अल्लाह ने एक एक वीक पॉइंट पकड़ा है, किसी को कमर का मसला, किसी को बाजू का मसला, किसी को चलने का मसला, किसी को खाने का मसला। अल्लाह कहते हैं अपने हर तकलीफ को लिखो अमल साले, ये मेरा अमल साले है, ये बीमारी मेरा अमल साले बन जाएगा, ये मेरी जॉब मेरे लिए अमल साले बन जाएगा। अल्लाह कबूल कर ले मुझे, मुझे जो मिलना है इधर से वो मुझे दुनिया के किसी और मैदान से नहीं मिलेगा। और यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कदरदान है वो। अल्लाह उन लोगों की भी कदर करता है जो उसके रास्ते में तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, उनकी भी कदर करता है जो माल और दौलत देते हैं, उनकी भी करता है जो वक्त लगाते हैं, उनकी भी करता है जो जज्बात लगाते हैं, जो अपने रिश्तों को थोड़ा सा नाराज़ करके भी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशें करते हैं। और याद रखिए, अल्लाह की अहमियत को नहीं जानता, कितना किया वो ये देखता है किस दिल से किया, कितने में से कितना वक्त दिया, कितने में से कितना माल दिया, किसके दिल में पहले ही माल की मोहब्बत नहीं थी और अब और भी नहीं रही, और किसके दिल में बड़ी मोहब्बत इसके बावजूद अल्लाह को दिया। कोई करोड़ों दे और थुड़दिलेपन से दे, और कोई चंद हज़ार दे, अल्लाह की नज़र है किसको किधर मिल रहा है। और सबसे मुश्किल सदका आपको पता है किस चीज़ का है? इज्जत का सदका। जब अल्लाह के लिए इज्जत में कमी आती है, गेटअप ये है, नहीं मैं अफसर साहब की बेगम नहीं लगूंगी, चलो ये गेटअप नहीं मैं इख्तियार कर सकती, सॉरी, ये सदका सबसे बड़ा है। ये हाल उलिया नहीं, ये नहीं हो सकता, सादगी ये नहीं करनी, और किसी ने मुझे कह दिया कुछ, ये सदका मैं नहीं करूंगी, मैं तो बदला लूंगी। देखिए, उन्होंने शाह गस्सान के ख़त को आग में डाल दिया, आप और मैं ज़रा ऐसी ऑफर्स को आग में डालते? अल्लाह अकबर। और एक पोटली भर के छोटी सी खजूरों की लाया था गरीब शख्स अबू अकील, अल्लाह के नबी ने उसको भी कबूल कर लिया। किसी ने इतना दिया, किसी ने इतना थोड़ा दिया, अल्लाह कहता मेरी नज़र में सब है, किसी को बताने की, पूछने की, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह एक एक चीज़ को देखता है, एक एक चीज़ पे नज़र रखता है। बड़ी ज़रूरी होती है ये चीज़। देखिए, हम सोचते हैं कि अल्लाह थक गया हमें दे दे के, ये भी मैं आपको एक छोटा सा माइंडसेट बताना चाहती हूँ कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं अब इतने साल से हम एक ही नेकी कर रहे हैं, अब फिर यही करती रहूँ, चूँकि अल्लाह पहले अजर देता होगा अब नहीं देगा, ऐसा है वैसा है। एक तारीख का वाकया कहीं पढ़ रही थी, जहांगीर बादशाह गुजरे, आपको पता है, तो नवाब अब्दुल रहीम खान, जहांगीर के दौर का एक बहुत बड़ा नवाब था, कहते हैं इसको बड़ा शौक था कि लोग मेरी तारीफें करें, लोग इसको मोनेम कहते थे, मोनेम खान, इनाम देता था बहुत। कहते हैं आगरा से दिल्ली निकला काफिला लेकर, आगरा दिल्ली से तकरीबन कह रहे हैं कि 15 मंजिलों के फासले पर, यानी स्टॉप लेन, अगर सब पैदल जाए घोड़ों पर जाने लें तो 15 स्टॉप लेने पड़ते हैं। जहाँ जाता अपना लश्कर रखता, खादिम और जो सारे टीप टॉप लॉ लश्कर वहाँ लगाता। अब क्या हुआ, एक बस्ती बस्ती वहाँ लोग जमा होते, दरबार लगता, बड़े बड़े अमीर अपनी जगहों पे बैठते, ये नवाब अपनी कुर्सी पे बैठ जाता और खड़े होते। कहते हैं कि पहली जगह जब स्टॉप किया ना, तो एक फ़कीर सामने आ गया, तो उसने तरन्नम से एक शेर पढ़ा जिसमें इस नवाब की बड़ी तारीफ थी। फारसी का शेर है कि मुनम बेकोह दश्त व बियाबान गरीब नीस, हर जा के रफ्त खैमा जद व बाख रसी, कि मतलब ये मुनम जब तक है तो ये जहाँ जाके बैठेगा कोई गरीब ही नहीं रहेगा, और मतलब जहाँ उठेगा वहाँ से खैर होगी। नवाब को बड़ा खुशी हुई, उसने क्या किया कि कहा कि इसको 1 लाख रुपये इनाम में दे दो। अब फकीर को बड़ी खुशी हुई। जब एक दूसरे दिन काफिला चला, 15 मील दूर गया, काफिले ने पड़ाव डाला, शाम को दोबारा यही मजलिसें लगती थी लोग अपने नाम पे, वही फकीर वहाँ खड़ा है, उसने जाकर फिर उससे भी अच्छा शेर पढ़ा, बादशाह ने उसको फिर 1 लाख रुपया दे दिया, बड़ा खुश हुआ। हर 2-3 स्टॉप के बाद यही हुआ, वो जाके नवाब की तारीफें करता और उसने शेर पढ़े। अब क्या हुआ, जब 7-8 दफ़ा ऐसा हो गया ना, तो फकीर को एक दफ़ा ख्याल आया कि अभी तक इतना मुझे दे चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगले स्टॉप पे पहुंचूं तो मुझे वापस मांग ले, तो मैं नहीं जाता। अच्छा, कहा नहीं गया। बादशाह को आदत हो गई थी कि जब भी पड़ाव लग डलेगा तो ये आएगा, तारीफें करेगा, फकीर कोई नहीं आया। अब क्या हुआ, बादशाह ने कहा कि फकीर को बुलाओ, उसको बुलाया, कहेगा आज क्यों नहीं आया, क्या तूने ये सोचा था कि मैं आज तुझे नहीं दूंगा, जा मेरे वजीर से पूछ मैंने क्या कहा। कहता वजीर को क्या कहा है? कहता है वजीर, कहता है कि बादशाह ने मुझे 15 लाख लग करके दे दिए और मुझे कहा था कि हर स्टॉप पे ही आएगा, तो तू इसको देना, हर स्टॉप पे तू इसको देना। तो मैंने तो तेरे लिए भी अगले स्टॉप्स के भी लाख लाख रुपए जमा किए। ये एक वाक्य है तारीख का। अब आप जरा सोचिए, बंदा बाजवन नेकियां कर किस तरह थक जाता है, और थोड़ी अल्लाह ने मुझे देना। अच्छा मजे की बात बताऊं, जब बंदा एक ही जगह बैठ के नेकियां कर रहा होता है ना, तो वाकई ये फीलिंग आती है। मैं अपने ऊपर लेके आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैं पिछले 10 साल से आपके या 9 साल से स्कूल में बैठी होती, तो हो सकता है मैं भी इस सोच की हामिल हो चुकी थी कि अब जो होना था हो गया, करना था कर गया। यदि अगर एक सेम डगर पे चल रहे होते, लेकिन अगर हर दूसरे साल पर नया प्रोजेक्ट, नया कोर्स, स्टोबनर क्लास, बेयर के क्लास, स्ट्रोमन क्लास, ये क्लास वो क्लास, ये चीज़ें क्या होती हैं? ये बंदे में जज्बे लाती हैं। जब आपके जज्बे मुर्दा होने लगे ना, कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ ले, आप कहते नया स्कूल बना ले, फिर तो आप जीरो पे आ गए। इसी में रह के काम करें। आप में जो साथी खुद को डीमोटिवेटेड समझता है ना कि मेरे अंदर से मोटिवेशन कम हो गया है, वो खुद कोई आइडिया लाए, बैठे मीटिंग करते हैं, आपको इजाजत देते हैं, आप क्लास शुरू करें, आप बच्चों का कोर्स शुरू करें, आप छोटों का कोर्स शुरू करें, आप कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को जाया ना करें। वजह क्या है? हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब ये तो रोज ही होना है, ये तो हो ही रहा है। अब रोज आके सफाई करती हैं, तो भला आज की सफाई का भी मुझे अजर मिलना है, और ये और वो नहीं। दुआ करें जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह हमें हमारी जगहों से ना हटाए। सहाबा की नेकियों से ये भी सीखे, आखिरी दिन तक खतरा है, तबूक में भी खतरा है भाई। अल्लाह के बंदो, हुनैन तक तो इतना कुछ कर करा के आ गए, नहीं पर आज क्यों छोड़ा? क्योंकि जिस्म खाता है, दिल धड़कता है, ऑक्सीजन लेते हैं। जब मुसलसल मरते दम तक अल्लाह की नेमते हैं, तो क्या थोड़ी सी नेकियों पर राजी हैं? जरा से 2-3 सेकंड अपने आंखों को बंद करके सोचें, जिस दिन ये सफर शुरू हुआ था नेकियों का, उस दिन के जज्बों और आज के जज्बों में कमी है कि ज्यादती है? कितने तो ठंडे होके बैठ गए होंगे, और कितने कहते हैं अब कर लिए ना बाकी काम, ये सविलुल हुदा का काम है, ये अब रूहुल कुरान आ ले, ये अब वो फलां फले। नहीं, मैं हर चीज को अपने ऊपर लेकर सोचे। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर लेंगे ना, आपके जज्बे होंगे। मैं अपने ऊपर लेकर बताऊं, यकीन करें कि मैं उन लोगों का हक जिंदगी में दे ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है दुआओं के सिवा मैं कुछ नहीं दे सकती जो मुझे नेकियों के मौके देते हैं। अल्लाह की कसम, बगैर किसी मुबालगे के, बगैर किसी एग्जेजुरेशन के, वो लोग मेरे मोहसिन हैं जो मुझसे काम लेते हैं, कहीं भी लेते हैं। जो मुझे मीटिंग में बुलाते, जो मुझे मशवरों में बुलाते, जो मुझे पढ़ाने के लिए बुलाते, जो कहते हैं कोर्स शुरू कर दीजिए, कोई कहता ट्रेनिंग कर दे, कोई कहता तरबियत कर दें, कोई कहता इधर मस्जिद पढ़ी आबाद कर जाएं, कुछ भी कहता है ना, अल्लाह की कसम खा के कहूँगी इस जगह पे वो मेरे मोहसिन है। वरना मैं अपने घर में बैठी, अंधेरे कमरे में बैठी होती, सुस्ती। अपनी जिंदगी के लिए कोई कोई सपोर्ट ढूंढे। अब अगली आयत इसी का विषय है,